समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। कार्यक्रम परिक्रमा में आज मैं हूं आपकी सद वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
Hello Vaishnavi, hello and good day everybody. You are tuned to Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Vaishnavi, and for you we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Samrat Samprati Museum at Koban, Gujarat on the occasion of Mahavir Jayanti. Says the message of this museum is vital for the world faced with violence and uncertainty.
प्रधानमंत्री ने गुजरात के सानंद में केन्स सेमीकंडक्टर OSAT संयंत्र का उद्घाटन किया।
8 women devotees killed in a stampede at Shitla Ashtami Temple in Bihar's Nalanda district.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी अधिकारियों के तबादलों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की।
A Kuwaiti giant oil tanker hit an Iranian drone strike off Dubai coast.
और IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today, we will talk about the Bharat Tribes Fest 2026 and. Vaishnavi, have you ever wondered who truly understands the rhythm of nature better than anyone else? Who has been living in harmony with forest, rivers and land long before sustainability became a global buzzword? Can you tell me, Vaishnavi?
अभिषेक, इसका जवाब है भारत के आदिवासी समुदायों के हृदय में। नई दिल्ली में चल रहे भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 में यही सोच साफ तौर पर दिखाई देती है।
Yes, absolutely. The energy is high. The response has been incredible. And guess what? There is a major update that has made this fest even more special. What's the big news? Well, just hold on, listeners. We'll be revealing it in just a few minutes.
जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने वन धन कॉन्क्लेव में कहा कि आदिवासी समुदाय सिर्फ प्रकृति के रक्षक ही नहीं है बल्कि प्राचीन ज्ञान के संरक्षक भी हैं।
Yes, and for centuries they have lived in balance with forests, water and biodiversity. And think about a simple example, Vaishnavi. While many of us today are switching to organic products, tribal communities have always depended on natural, chemical-free resources for their food, medicine and livelihood. And sustainability for them isn't a trend, it's a way of life.
लेकिन अभिषेक, सवाल ये है कि क्या उन्हें हमेशा उनका हक मिला है?
Well, Vaishnavi, the reality is for a long time they didn't. Middlemen often stepped in, buying forest produce like mahua, tendu leaves, honey, lac and sal seeds at extremely low prices. And a tribal family collecting honey from deep forest would put in days of effort only to receive a fraction of its true value.
अभिषेक, अगर हम देखें तो पिछले एक दशक में स्थिति में सुधार हो रहा है। अब सरकार सिर्फ मदद नहीं बल्कि सशक्त बनाने पर ध्यान दे रही है। 2018 में वन धन योजना शुरू हुई जिससे आदिवासी समुदायों को ट्रेनिंग और सीधे बाजार तक पहुंच मिल रही है।
एंड नाउ द सेम हनी कलेक्टेड इन फॉरेस्ट टुडे इज बीन प्रोसेस्ड, पैकेज्ड, ब्रांडेड एंड सोल्ड एट अ मच बेटर प्राइस।
और श्रोताओं, इस बदलाव में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ परिसंघ यानी ट्राइफेड की बड़ी भूमिका है। ये संस्था आदिवासी लोगों को पैकेजिंग, मार्केटिंग और नई तकनीकें सिखा रही है ताकि उनके उत्पाद देश ही नहीं दुनिया में भी बिक सके।
वेल, नाउ हियर कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग अपडेट फॉर आवर लिसनर्स दैट वी मेंशन एट द बिगिनिंग एंड इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ द वेट। Well, Vaishnavi, due to an overwhelming response, Bharat Tribes Fest 2026 has now been extended till the 5th of next month. So, if you haven't experienced it yet, this is your chance, listeners. Do visit and be a part of this vibrant celebration of India's rich tribal heritage.
ये इसलिए भी खास है क्योंकि अब कारीगरों और उद्यमियों को ज्यादा समय और अवसर मिलेंगे सीधे लोगों से जुड़ने के लिए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस असली हुनर और असली कहानियाँ.
Absolutely, and held at the Sundar Nursery in New Delhi, the festival has already seen incredible participation, over 1,000 tribal artisans, chefs and cultural performers from across India.
श्रोताओं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको हर तरह की चीजें देखने को मिलेंगी. हाथ से बने गहने, कपड़े, जंगल से मिलने वाले उत्पाद और पारंपरिक खाना, हर चीज में पीढ़ियों का अनुभव और ज्ञान छिपा हुआ है.
And the business conclave launched on the 19th of March adds another layer to this journey. It brings together policy makers, industry leaders and tribal entrepreneurs, opening doors to sectors like food processing, handicrafts, sustainable luxury and even community-led tourism.
लेकिन अभिषेक, जब पारंपरिक ज्ञान और नए मौके साथ आते हैं तो क्या होता है?
Well, the answer is transformation from startups rooted in indigenous wisdom to premium tribal brands like the newly launched RISA. The festival is shaping a future where tradition and innovation work hand in hand.
इस उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने किया. उन्होंने इसे भारत की विविधता और रचनात्मकता का उत्सव बताया.
Yes, and have you ever watched a dance and felt like it was speaking to you? That's exactly what happens here. Even after the music fades, the emotions linger. And on that note, here's a glimpse straight from the fest. Let's hear what visitors from across the country have to say as they share the experiences.
It was a wonderful experience and I think everybody should come here and, you know, take a look.
Humne abhi tak visit kiya, bahut hi acha hai. और ये इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए.
It was a good experience. So, because बहुत सारे स्टेट्स का खाना है, डाइवर्सिटी है, तो यू लाइक गेट टू नो अबाउट द फूड एंड द कल्चर.
यहाँ कर बहुत अच्छा लगा है और सरकार का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है.
भारत ट्राइब फेस्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा. एंड यहाँ हमारा तीसरा विजिट है और हम लोगों ने यहाँ से काफी शॉपिंग किया है. थैंक यू सो मच.
जैसे जैसे लोग इस उत्सव को देखते हैं, खाना चखते हैं और कारीगरों से मिलते हैं, एक बात साफ हो जाती है, ये सिर्फ प्रदर्शनी नहीं बल्कि अतीत और भविष्य को जोड़ने वाला एक सेतु है.
सो here's a thought फॉर our listeners टू कैरी विद them today. हाउ मेनी सच स्टोरीज आर स्टिल वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड अक्रॉस द कंट्री एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ कैन ईच वन ऑफ अस प्ले अ रोल इन ब्रिंगिंग देम टू लाइट.
जब आदिवासी समुदाय आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है. जब उनकी आवाज सुनी जाती है तो देश और मजबूत होता है. और जब उनकी विरासत का सम्मान होता है तो भारत और खूबसूरत बनता है.
एंड परहैप्स द आंसर बिगिंस विद समथिंग सिंपल, क्यूरियोसिटी, टेकिंग द टाइम टू लिसन, टू लर्न एंड टू एक्नॉलेज स्टोरीज दैट मे नॉट ऑलवेज मेक द हेडलाइंस बट होल जनरेशंस ऑफ विजडम विद इन देम. इट कुड बी सपोर्टिंग लोकल आर्टिजांस, engaging with indigenous art and culture, or even sharing these stories with others, each small step adds up.
बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने. आखिर आदिवासी समुदाय की प्रगति ही देश की प्रगति की असली पहचान है.
So to conclude our discussion today, the next time you come across a voice from these communities, pause and listen, because in that moment you're not just hearing a story, you're helping preserve a legacy.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
द 7-डे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 विल कंक्लूड टुडे एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली. द फेस्टिवल शोकेस्ड मोर देन 125 फिल्म्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, मार्किंग अ मेजर एडिशन टू इंडियाज ग्लोबल सिनेमा कैलेंडर. फ्री पब्लिक स्क्रीनिंग्स, डिस्कशंस, वर्कशॉप्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एंड वी हैव मोर फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट.
The week-long film festival showcased short film screening at multiple PVR venues in the national capital, including Saket, Vasant Kunj, Patel Nagar and Pitampura, offering audiences a diverse and engaging cinematic experience on the closing day. The festival aimed to boost the creative economy, support film tourism, give fresh talent opportunities and solicitate creators with a single window. Talking exclusively to Akashvani News, filmmaker Ranjan Kumar described the film festival as a promising initiative, noting that although it is being organized for the first time, it carries the potential to grow into a major international event similar to the other prominent film festivals in the country. In the last day of the film festival, a gala screening of Gujarati language devotional drama film Krishna Sada Sahayate will be organized. Released last year, the film is the highest grossing Gujarati film of all time. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
World's largest census will be conducted in two phases, and the first phase will begin from tomorrow, 1st of April. And for the first time, the census will be conducted digitally, and the option of self-enumeration will also be available. Mrityunjay Kumar Narayan, Register General and Census Commission of India, speaking exclusively in the Public Speak program of Akashvani, broadcast on Monday, explained how Census 2027 is different from previous census.
जनगणना 2011 में आंकड़े फिजिकल कागज पे इकट्ठा किए गए थे इस बार 2027 में डिजिटल माध्यम से हो रही है इसमें प्रगणक घर घर मोबाइल फोन या डिजिटल डिवाइस लेकर के जाएंगे और उसमें मोबाइल एप्लीकेशन पे सीधे आंकड़े दर्ज करेंगे
He also clarified that how Indians living abroad will be able to participate in the census.
प्रथम चरण बेसिकली मकानों की गणना और मकान सूचीकरण है इसमें अगर बाहर रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता हम दूसरे चरण में जब एक व्यक्ति की गणना कराते हैं तो उसमें जो बाहर रहने वाले हैं उनको एम्बेसी के माध्यम से उनकी गणना कराने की व्यवस्था है
मिस्टर मृत्युंजय कुमार नारायण एक्सप्लेन व्हाई सेंसस इज कंडक्टेड वंस इन एवरी डेकेड
जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 है उसमें केंद्र सरकार जब उचित समझती है तब जनगणना कराती है आम तौर पे प्रपाटी के रूप में हर 10 वर्ष में यह होता रहा है 2011 में हुआ था उसके बाद 2021 के लिए भी अधिसूचना निर्गत की गई थी लेकिन कोविड की स्थिति थी उसकी वजह से उसको स्थगित करना पड़ गया था और अब इस वक्त 2027 की जनगणना चल रही है
He explained the steps to fill a self-enumeration form to participate in the census 2027.
स्वगणना इसके लिए हमारा अलग से पोर्टल है मोबाइल के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य को सिलेक्ट करें प्रश्नों का जवाब देते जाएं और उसको ड्राफ्ट को सेव कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं
Narayanan also explained how incorrect information can be corrected while filling self-enumeration forms during the census 2027.
उसको एडिट कर सकते हैं जिस प्रकार से मोबाइल पे ओटीपी आया उसी प्रकार से पुनः जाकर के उसको संशोधित कर सकते हैं उसको ड्राफ्ट सेव कर लें उसको प्रीव्यू कर सकते हैं और लगता है कहीं गलती हो गई उसको सुधार सकते हैं
He also answered a very significant query on how people who do not have access to technology can also fill the form during census 2027
आपके पास स्मार्टफोन नहीं है कंप्यूटर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है प्रगणक आपके घर में जाएंगे और आपसे सूचना लेंगे और अपने मोबाइल पे दर्ज करेंगे आपकी भी गणना होगी आपके परिवार की गणना होगी आप चिंता ना करें
और रुक करते हैं नागपुर की ओर नागपुर में रंग संस्कृति और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है और इन सिटी क्राफ्ट मेला और लोक नृत्य समारोह में देश भर की कला और लोक संस्कृति देखने को मिल रही है एक रिपोर्ट
नागपुर में ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला के 32वें आयोजन का शुभारंभ 27 मार्च को केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय अंतर्गत आने वाले दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में भव्य रूप से हुआ इस मेले में देश भर से कलाकार सहभागी हुए हैं इसमें आंध्र प्रदेश का वीर नाट्यम मध्य प्रदेश का गुदुम बाजा राजस्थान का सेहरिया स्वांग गुजरात का तलवार रास और मणिपुर का लाई हरोबा जैसे लोक नृत्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं हस्तशिल्प में बनारसी और चंदेरी साड़ियाँ चिकनकारी फुलकारी ज्वेलरी मेटल क्राफ्ट और खुर्जा पॉटरी जैसे उत्पादन आकर्षण का केंद्र बने हैं बहुरूपी कठपुतली और टेराकोटा कला की लाइव प्रस्तुतियां भी दर्शकों को लुभा रही है ये मेला 5 अप्रैल तक जारी रहेगा जिसमें प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से क्राफ्ट और फूड जोन तथा शाम 6:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आज 31 मार्च को दिव्यांग बच्चों का दिव्य रंग दिव्यांगान से ये कार्यक्रम और गायिका प्रियंका गहरवार का लोक संगीत विशेष आकर्षण रहेगा 1 अप्रैल को कबीर गायन और ट्रांसजेंडर कलाकारों द्वारा महाराष्ट्र के लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे 2 से 5 अप्रैल के बीच सिद्धि धमाल छाऊ नृत्य और ढोलू कुनीथा जैसे विविध लोक एवं आदिवासी नृत्य दर्शकों को देखने मिलेंगे नागपुर तथा विदर्भ के लोग इस सांस्कृतिक महोत्सव का आनंद ले रहे हैं परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी
लोकतंत्र में हर वोट मायने रखता है और इस बार केरल में ये एक मीठे अंदाज के साथ सामने आया है युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने वोट स्वीटेंड केरलम अभियान शुरू किया है हमारे संवाददाता से जानते हैं और जानकारी
At selected polling booth, first time voters will be welcomed with a packet of halwa, a sweet beginning to their journey in democracy. Kerala has over 4,66,000 new voters below 19 years and more than 45 lakh in their 20s, making youth participation more important than ever. District electoral officers will identify specific polling booths and trained volunteers will verify first-time voters before distributing the seats to make voting even easier. Free transport is being arranged in districts like Ernakulam and Thiruvananthapuram on April 9. Voters can avail up to 2 kilometers to polling booth at no cost in partnership with a popular ride service platform. Free transport is being arranged for voters on the polling day. A seat gesture, a helping hand, all to ensure that every young voice is heard. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
The third edition of the Culinary Cascade 2026 was held at the Wards Lake in Shillong. The two-day festival featured a wide range of activities, including panel discussions, culinary demonstrations, product launches, and musical performances. We have a report.
The third edition of the Culinary Cascade was recently simmering at the scenic Wards Lake here in Shillong. The State Tourism Department and the Chief Minister's Meghalaya Grassroots Music Program jointly created a platform for farmers, entrepreneurs and artisans to showcase their agricultural produce and innovative farming methods. Held on March 27th and 20th, this extraordinary event's goal was to promote Meghalaya as a culinary tourism destination while supporting local talent and businesses. Officially launched by Chief Minister Sri Conrad K. Sangma, the Culinary Cascade featured a wide range of activities including panel discussions, culinary demonstrations, product launches, and musical performances. During the inauguration, the Chief Minister also announced an initiative called Mission 1000 that aimed at tackling malnutrition and stunting among children in the state through targeted nutrition and monitoring. The Culinary Cascade's theme was crafted for all five senses and it had Meghalaya's aromatic local delicacies and innovative fusion dishes on display. That said, the event was more than a feast for visitors. It was a tribute to Meghalaya's rich culinary heritage as the focus was on indigenous ingredients, age-old recipes and the stories behind every bite. Among the innovative methods, the hydroponic farming, which is a soil-free method of cultivation, stood out at the event. It ensures clean and high-quality produce grown in greenhouses. With strong participation and growing interest from visitors, the Culinary Cascade continues to highlight the state's rich agricultural diversity while also promoting innovation and entrepreneurship in the culinary world. For Parikrama, Anumita from Akashvani Shillong.
अभिषेक अब चलते हैं खेल के मैदान में और श्रोताओं को देते हैं वहां की हलचल। आईपीएल क्रिकेट 2026 के चौथे मुकाबले में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब का स्मरण कर रहे हैं जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने 31 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया था। कोल्हापुर राज के शासक महाराजा भाऊ साहब के पुत्र चीमा साहब आजादी की पहली लड़ाई के दौरान 31 जुलाई 1857 तथा 6 और 7 दिसंबर 1857 के विद्रोह के प्रमुख संचालकों में थे।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के 27वें नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के अधिनायकों के साथ गोपनीय वार्ताएं की तथा कुछ भारतीय युवराजों और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को गुप्त संदेश भेजे। नाना साहेब पेशवा के दूत उनसे मिले।
चीमा साहब कोल्हापुर में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सफल रहे जो उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासकों के लिए गंभीर खतरा बन गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर बॉम्बे भेज दिया जहां से उन्हें 12 मई 1858 को कराची भेज दिया गया। कराची में उन्हें 11 वर्ष तक यानी 15 मई 1869 को अपनी मृत्यु के दिन तक हिरासत में रखा गया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब को हमारा शत शत नमन।
आज हम शहीद नादिर शाह की भी याद कर रहे हैं जिन्होंने गुजरात में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। ब्रिटिश सेना के हमले से बचने के लिए अपने साथियों को बचाते हुए वे गिरफ्तार कर लिए गए। 31 मार्च 1858 को उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और मार्च 1859 में उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया और हिरासत में ही 12 अप्रैल 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी इस महान सपूत शहीद नादिर शाह को प्रणाम करती है।
And we are also remembering Meena Kumari, born Majabeen Bano, who passed away on this day in 1972. She was an actress and poet who worked in Hindi films, known as the Tragedy Queen. She is regarded among the finest and the greatest actresses in the history of Indian cinema. In a career spanning 33 years from child actress to adult, Kumari starred in over 90 films, and Meena Kumari won 4 Filmfare Awards in the Best Actress category, and she was the recipient of the inaugural Filmfare Best Actress Award for Beju Bawra in 1954.
अपनी असाधारण अभिनय प्रतिभा के दम पर उन्होंने बैजू बावरा, साहिब बीवी, गुलाम और पाकिजा और जैसे फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए जो आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी फिल्मों के गीत और अभिनय आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं और हर पीढ़ी के दर्शकों को भावुक कर देते हैं। तो आइए इसी बात पे सुनते हैं मीना कुमारी की फिल्मों के सदाबहार गीतों का एक खास संग्रह।
हम तेरे प्यार में सारा आलम हो बैठे हैं, हो बैठे चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, चले राह चलते चलते मौसम है आशिकाना।
And we also remembering James Cleveland Jesse Owens, who passed away on this day in 1980. He was an American track and field athlete who made history at the 1936 Olympic Games by winning 4 gold medals, setting Olympic records in each event. He is widely regarded as one of the greatest athletes in track and field history. And also we are remembering today John Donne, who passed away on this day in 1631. He was an English poet, scholar, soldier and secretary, born into a recusant family who later became a cleric in the Church of England. Under royal patronage, he was made Dean of St. Paul's Cathedral in London. He is considered the preeminent representative of the metaphysical poets. His poetical works are noted for the metaphorical and sensual style and include sonnets, love poems, religious poems, Latin translations, epigrams, elegies, songs and satires.
आज पुण्यतिथि है। हिंदी साहित्य में भावपूर्ण और प्रेरणादायक निबंधों के लिए विशेष पहचान बनाने वाले विशिष्ट साहित्यकार पूर्ण सिंह की। वे एक महान शिक्षक, दार्शनिक तथा लेखक के रूप में जाने जाते थे। उनके निबंधों में मानवता, प्रकृति और आध्यात्मिकता के प्रति गहरा प्रेम दिखाई देता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे मजदूरी और प्रेम तथा सच्ची वीरता आज भी हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सरल भाषा और गहरी भावनाओं के कारण उनके लेखन ने पाठकों को जीवन के उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी थी।
Yes, and it is also the birthday of Angus MacKinnon Young, who was born on this day in 1955. He is an Australian musician best known as a co-founder, lead guitarist, songwriter, and the only continuous member of the hard rock band AC/DC. He is known for his energetic performances, schoolboy uniform stage outfits, and his own version of Chuck Berry's Duck Walk. Young was ranked 38th in the 2023 edition of Rolling Stone's 250 Greatest Guitarist of All Time list. In 2003, Young and the other members of AC/DC were inducted into the Rock and Roll Hall of Fame. Let's listen into the band's hit track, Thunderstruck, and it's from the album, The Razor's Edge.
अब हम बात करेंगे कठिन सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में नया इतिहास रचने वाली भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी के बारे में। उनका जन्म आज ही के दिन 1865 को महाराष्ट्र में हुआ था। उस समय महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन माना जाता था, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं को पार करते हुए अमेरिका जाकर चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की। उनकी उपलब्धि ने भारतीय महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।
एंड वी ऑल्सो रिमेम्बरिंग फ्रांस जोसेफ हाइडन, हु वाज बोर्न दिस डे इन 1732। ही वाज एन ऑस्ट्रियन कंपोजर ऑफ द क्लासिकल पीरियड। ही वाज पिवोटल इन द एवोल्यूशन ऑफ चेंबर म्यूजिक फॉर्म्स लाइक द स्ट्रिंग क्वार्टेट एंड पियानो ट्रियो। His contributions to musical form have led him to be called the father of the symphony and the father of the string quartet. Let's listen in to his hit composition, London Symphony No. 104.
आज जयंती है हिंदी साहित्य में अपनी प्रभावशाली लेखनी और गहन विचारों के लिए पहचान जाने वाले उत्कृष्ट लेखक रमाशंकर व्यास की। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाओं में समाज, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। सरल और प्रभावशाली भाषा के कारण उनके लेखन को पाठकों ने विशेष रूप से सराहा।
Yes, and William David Daniels was born on this day in 1927. He's an American actor known for his television roles, notably as Mark Craig on the drama series Saint Elsewhere, for which he won two Primetime Emmy Awards, the voice of Kit on the television series Knight Rider, and George Finney on the sitcom Boy Meets World, which earned him four People's Choice Award nominations. He reprised his Knight Rider role in the sequel TV movie Knight Rider 2000, and his Boy Meets World role in the sequel series Girl Meets World. He also portrayed Carter Nash, the actual identity of the comedic superhero in Captain Nice.
आज जन्मदिन है नारी भावनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को बेबाक और संवेदनशील भाषा में प्रस्तुत करने वाली प्रसिद्ध लेखिका कमला दास का। उन्होंने अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषाओं में लेखन किया और अपनी आत्मकथा माई स्टोरी के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। उनकी रचनाओं में महिलाओं की भावनाओं, समाज और रिश्तों की सच्चाई को खुलकर व्यक्त किया गया है।
Yes, and Kamala Das is renowned for her poems and is renowned for her work. My Story is renowned for his poems and candid autobiography. Her works are known for originality, versatility and indigenous flavor of the soil. She was also widely read columnist and wrote on diverse topics including women's issues, childcare, politics, etc. On 31st May 2009, aged 77, she died at the Jahangir Hospital in Pune. And we also remember Koneru Hampi, who was born on this day in 1987. She is an Indian chess grandmaster. Koneru is a runner-up of the Women's World Chess Championship and the reigning two-time Women's World Rapid Chess Champion. In 2002, she became the youngest female player and the first Indian female player to achieve the title of grandmaster, aged 15 years, 1 month, 27 days, a record only since surpassed by Ho Yifan. Koneru is a gold medalist at the Olympiad, Asian Games and the Asian Championships. In October 2007, she became the second female player after Judith Polgar to exceed 2,600 ELO rating mark, being rated 2,606. Koneru won the Women's World Rapid Chess Championship in 2019 and 2024.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और अभिषेक को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय एंड
नमस्कार।